एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ग्रंथ सार में हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जो जुनून, खोज और अप्रत्याशित स्वतंत्रता की कहानी कहती है।
हाँ,
हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध लेखिका इसाबेल अयंदे के उपन्यास डॉटर ऑफ फॉर्च्यून, मतलब हिजा दिला फर्तूना की।
बिल्कुल, इसाबेल अयंदे एक बहुत बड़ा नाम।
हाँ, चिली की धरती से उपजी एक ऐसी आवाज है जिन्होंने मतलब लैटिन अमेरिकी साहित्य को एक नई पहचान दी है।
सही कहा, गार्सिया मार्केज और बोर्हेस की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए।
बिल्कुल, उनके लेखन में जादू यथार्थवाद की झलक तो है ही, साथ ही इतिहास, स्मृति, निर्वासन और सबसे बढ़कर वो मजबूत जटिल महिला पात्र।
हाँ, उनकी अदम्य भावना का चित्रण कमाल का है, जैसे द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स में
या इवालूना, ये कृतियां सबूत हैं और उनका अपना जीवन भी। सल्वाडोर अयंदे की भतीजी होना
और फिर वो 1973 का तख्ता पलट, निर्वासन, उसने उनके लेखन को एक असाधारण गहराई दी है ना?
निश्चित रूप से। और डॉटर ऑफ फॉर्च्यून जो 1999 में प्रकाशित हुआ,
हाँ
ये एक अनोखा मिश्रण है।
हाँ कई चीजों का, ऐतिहासिक महाकाव्य भी है,
एक चरित्र के विकास की कहानी भी, मतलब बिल्डिंग्स रोमान,
रोमांचक यात्रा वितांत भी,
और एक रोमानी सफर भी।
कहानी हमें ले जाती है 1840 और 50 के दशक में, चिली के वालपरेसो से
कैलिफोर्निया गोल्ड रश की उस अराजक सोने की धूल भरी दुनिया तक।
हाँ, और ये अयंदे के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पहली बार वो उत्तर अमेरिकी इतिहास को देख रही थी,
लेकिन अपने लैटिन अमेरिकी नजरिए से। ये दिलचस्प है।
बिल्कुल, तो आज हम इसी उपन्यास की नायिका एलिजा सोमर्स, उसकी असाधारण यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे।
कैसे एक संरक्षित माहौल में पली लड़की
परिस्थितियों के थपेड़े खाकर खुद अपनी तकदीर गढ़ने वाली एक स्वतंत्र स्त्री बनती है।
हाँ, कहानी के मोड़, चरित्रों के उतार चढ़ाव और जो गहरे संदेश हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वालपारिसो से।
बिल्कुल, तो कहानी का पर्दा उठता है चिली के बंदरगाह शहर वालपारिसो में। साल है 1832 के आसपास।
अच्छा।
अंग्रेज भाई बहन हैं जॉन सोमर्स, जिन्हें व्यापार में जेरेमी कहते हैं, और उनकी बहन मिस रोज,
अविवाहित बहन।
हाँ, अविवाहित बहन। उनकी अपनी ब्रिटिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, और एक सुबह उन्हें अपने दरवाजे पर एक टोकरी मिलती है, उसमें एक नवजात बच्ची।
बस ऐसे ही।
हाँ, बस ऐसे ही। वे उसे अपना लेते हैं, नाम रखते हैं एलिजा सोमर्स, पर कोई नहीं जानता कि वो किसकी बेटी है।
एक रहस्य।
हाँ, एक रहस्य जो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है।
और उसका बचपन?
उसका बचपन दो बिल्कुल अलग मतलब प्रभावों के बीच गुजरता है।
अच्छा, कैसे?
एक तरफ है मिस रोज, वो खुद कभी प्रेम में धोखा खा चुकी हैं और अब सख्त शिष्टाचार के खोल में जीती हैं। वो एलिजा को एक अंग्रेज लेडी बनाना चाहती हैं, पियानो, वाटर कलर, कढ़ाई बुनाई, ये सब सिखाती हैं।
ठीक है, और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ है घर की मापूचे रसोईया मामा फ्रेसिया।
मापूचे, चिली की स्वदेशी।
हाँ, वो एलिजा को धरती से जोड़ती है, उसे जड़ी बूटियों के रहस्य, लोक कथाएं और सबसे बढ़कर दिल की आवाज़ सुनाना सिखाती है।
दिलचस्प।
और एलिजा में एक खासियत भी है, उसकी सूंघने की शक्ति, वो गजब की है।
सूंघने की शक्ति मतलब?
हाँ, वो गन से लोगों के इरादे, उनकी भावनाएं, यहाँ तक कि छुपी हुई चीजें भी भांप लेती है।
वाह, तो ये दोहरी परवरिश, एक तरफ विक्टोरियन इंग्लैंड का अनुशासन, दूसरी तरफ मापूचे संस्कृति की वो मुक्त बुद्धि।
हाँ, ये विरोधाभास।
हाँ,
ये उसके चरित्र को बहुत गहराई से आकार देता है।
क्या आपको लगता है कि ये आंतरिक कश्मकश उसे शुरू से ही एक बाहरी या अलग होने का एहसास कराती होगी?
मुझे लगता है हाँ, वो मिसरोज की शिष्टाचार सीखती है, पर उसका दिल मामा फ्रांसिया की दुनिया में रमता है। वो दोनों दुनियाओं में पूरी तरह फिट नहीं होती।
और उसकी ये सूंघने की शक्ति, ये सिर्फ एक अनोखी बात है या?
नहीं, ये सिर्फ अनोखी बात नहीं है, ये उसे लोगों और स्थितियों की गहरी समझ देती है, एक तरह का छठा इंद्रिय बोध,
इंट्यूशन जैसा।
हाँ बिल्कुल, जो उसे अक्सर सच के करीब ले जाता है, भले ही वो सच असुविधाजनक क्यों ना हो, और ये आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है।
अच्छा।
इसी कश्मकश के बीच उसकी किशोरावस्था में एक नया तूफान आता है, हुआकिन अंधियता।
हुआकिन अंधियता।
हाँ, वो जेरेमी के दफ्तर में काम करने वाला एक गरीब लेकिन जोशीला और आदर्शवादी क्लर्क है। उसके मन में सामाजिक न्याय और क्रांति के सपने पलते हैं और एलिजा को उससे पहली नजर में ही गहरा छिपा हुआ प्यार हो जाता है।
ओ।
उनका रिश्ता चोरी छिपे जुनून की हद तक परवान चढ़ता है। ये उसका पहला विद्रोह है एक तरह से
सामाजिक दायरों के खिलाफ।
बिल्कुल,
ये युवा प्रेम अपने आदर्शवाद और जुनून के साथ अक्सर मुश्किल होता है। और हुआकिन सिर्फ एक प्रेमी नहीं है, वो उस समय के लैटिन अमेरिका में जो बदलाव के विचार पनप रहे थे,
हाँ, वो उनका प्रतीक भी है।
बिल्कुल।
और फिर 1848-49 में वो खबर आती है।
कौन सी खबर?
कैलिफोर्निया में सोना मिला है, गोल्ड रश।
हाँ, गोल्ड रश।
हाँ, दुनिया भर में आग की तरह फैलती है खबर। हॉकिन जैसे हजारों युवाओं के लिए ये रातों रात अमीर बनने का सपना
और अपने आदर्शों को पूरा करने का मौका।
हाँ, शायद वो एलिजा से वादा करता है कि वो कैलिफोर्निया जाएगा, पैसे कमाएगा और फिर उसे अपने पास बुला लेगा। उसे लगता है ये उनकी किस्मत बदल देगा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। हॉकिन के जाने के बाद एलिजा को पता चलता है कि वो गर्भवती है।
हो, उस जमाने में तो ये,
हाँ, बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ वो एक ऐसा फैसला लेती है जो उस जमाने की किसी भी शरीफ घर की लड़की के लिए अकल्पनीय था।
क्या करती है वो?
वो इंतजार नहीं करती, वो हॉकिन को खोजने उसके पीछे कैलिफोर्निया जाने का फैसला करती है।
अकेले, गर्भवती?
हाँ, मामा फ्रेशिया उसकी मदद करती है। वे एक योजना बनाते हैं। एलिजा बीमारी का बहाना करती है और फिर एक रात एक जहाज के माल रखने वाले निचले गंदे और घुटन भरे हिस्से में, मतलब होल्ड में, छिपकर सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ती है।
अविश्वसनीय। जरा सोचिए, 19वीं सदी, एक अविवाहित गर्भवती लड़की सारे बंधन तोड़कर हजारों मील दूर एक अनजानी अराजक धरती की ओर, वो भी जहाज के उस नरक जैसे होल्ड में।
हाँ, ये सिर्फ प्रेम का जुनून नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसकी अदम्य इच्छा शक्ति है, नियति को अपने हाथों में लेने की घोषणा। वो निष्क्रिय नायिका बनने से साफ इनकार कर रही है।
सही कहा, लेकिन ये जोखिम बहुत बड़ा था।
क्या उसे इसका अंदाजा था?
शायद पूरी तरह नहीं। जहाज की यात्रा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह साबित होती है।
कैसे?
होल्ड में अंधेरा, सीलन, चूहे, इंसानी मलमूत्र की दुर्गंध, बहुत बुरी हालत।
हे भगवान।
और इस जानलेवा सफर में उसका गर्भपात हो जाता है।
उफ।
वो लगभग मर ही जाती है। और यहीं उसकी मुलाकात होती है ताओचियन से।
ताओचियन? ये कौन है?
ताओ जहाज का चीनी रसोइया है। लेकिन वो सिर्फ रसोइया नहीं, एक कुशल वैद्य भी है। एक्यूपंक्चर और जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान है उसे।
अच्छा।
हाँ, उसकी अपनी कहानी भी दुख और संघर्ष से भरी है। वो कभी चीन में एक संपन्न परिवार से था, पर हालात ने उसे पहले गुलाम बनाया, फिर एक चिकित्सक। ताओ अपनी दिवंगत पत्नी लिन की यादों और उसके प्रति एक अनकहे कर्तव्य के बोझ तले दबा है। वो एलिजा की हालत देखता है, उसे बचाता है।
कैसे?
अपनी जड़ी बूटियों और सुइयों से उसका इलाज करता है, उसकी देखभाल करता है। और उन दोनों के बीच शब्दों से परे एक गहरा मौन रिश्ता पनपने लगता है।
कैसा रिश्ता?
करुणा का, कृतज्ञता का और धीरे धीरे आपसी सम्मान का।
ताओचियन का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण लगता है, शांत, ज्ञानी, गोल्ड रश की उस आपाधापी के बिल्कुल उलट।
हाँ, बिल्कुल। उसका अतीत, उसकी चिकित्सा पद्धति, उसका जीवन दर्शन, ये सब एलाइजा के जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम लाते हैं।
उनके रिश्ते की शुरुआत में क्या सिर्फ निर्भरता थी या शुरू से ही एक बराबरी का एहसास भी था जो उस समय शायद दुर्लभ रहा होगा?
शुरुआत में निश्चित रूप से निर्भरता थी। एलाइजा शारीरिक और भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर है, लेकिन ताओ उसे कभी कमजोर महसूस नहीं कराता। वो उसे एक व्यक्ति के रूप में देखता है, उसकी इच्छा शक्ति का सम्मान करता है। जैसे जैसे एलाइजा ठीक होती है, ये निर्भरता आपसी समझ और साझेदारी में बदलने लगती है।
अच्छा।
जब वे सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं तो नजारा चौंकाने वाला है।
कैसा है सैन फ्रांसिस्को?
वो शहर नहीं है, वो कीचड़ भरा टेंटों और अस्थायी झोंपड़ियों का जंगल है। हर तरफ सोने की दीवानगी में अंधे मर्द,
दुनिया भर से आए हुए।
हाँ, अमेरिकन, यूरोपियन, लैटिन अमेरिकी, चीनी, सब अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। न कानून, न व्यवस्था, हिंसा, लालच, अराजकता।
महिलाओं के लिए तो बहुत असुरक्षित होगा।
बेहद। इसीलिए एलिजा की सुरक्षा के लिए ताओ एक कठोर लेकिन जरूरी कदम उठाता है।
क्या?
वो उसके लंबे बाल काट देता है, उसकी छाती को कसकर सपाट बांध देता है और उसे ढीले ढाले लड़कों वाले कपड़े पहना देता है।
मतलब उसे लड़का बना देता है।
हाँ। एलिजा सोमेयर्स अब एलियास अंध्यता बन जाती है, एक लड़का जो अपने खोए हुए भाई हुएकिन की तलाश में है।
और ताओ?
ताओ खुद भी अपनी पहचान छुपाता है क्योंकि चीनी लोगों के प्रति वहाँ जबरदस्त नफरत और हिंसा है।
ये भेष बदलना, ये सिर्फ बाहरी नहीं होगा, ये गहरा आंतरिक रूपांतरण भी होगा, है ना?
हाँ, मिस रोज की सिखाई वो लेडी वाली पहचान,
हाँ, वो पीछे छूट जाती है।
एलियास बनकर एलिजा उन जगहों पर जा सकती है, वो काम कर सकती है जो एक औरत के लिए असंभव थे।
बिल्कुल, ये उसे एक अभूतपूर्व स्वतंत्रता देता है।
लेकिन क्या ये उसे उसकी स्त्री पहचान से दूर भी ले जाता है, या शायद उसे एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ बिल्कुल, एलियास बनकर वो ज्यादा आज़ादी से घूम सकती है, लेकिन उसे लगातार डर भी लगा रहता है कि कहीं उसका राज खुल न जाए। वो और ताऊ मिलकर हुआकिन की तलाश शुरू करते हैं। वे उत्तरी कैलिफोर्निया के ऊबड़ खाबड़ इलाकों, खनिकों के शिविरों, उभरते धूल भरे कस्बों में भटकते हैं।
और गुजारा कैसे करते?
जिंदा रहने और हुआकिन का सुराग पाने के लिए एलिजा तरह तरह के काम करती है। कभी किसी सलून में पियानो बजाती है,
सलून में,
हाँ, जहाँ अक्सर वेश्याएं भी आती जाती हैं। कभी खनिकों के लिए खाना पकाती है, और धीरे धीरे ताऊ की मदद करते हुए जड़ी बूटियों और चिकित्सा में भी कुशल होने लगती है।
वो सीख रही है।
हाँ, वो सीख रही है और बदल रही है। इस दौरान वो गोल्ड रश की असलियत अपनी आंखों से देखती है।
क्या देखती है?
सोने का लालच इंसानों को कितना गिरा सकता है, दिन रात की कमर तोड़ मेहनत, फिर भी हाथ लगती निराशा, और सबसे भयानक नस्लिया हिंसा।
किसके खिलाफ?
गोरे अमेरिकी खनिक, जिन्हें यांकी कहा जाता है, वो चीनी, चिलेवासी और मैक्सिकन खनिकों को बर्बरता से मारते पीटते हैं, उनकी जमीनें छीन लेते हैं, कानून भी उन्हीं के पक्ष में है।
एक क्रूर अन्यायपूर्ण दुनिया।
हाँ, ये अयंदे अमेरिकी सपने के उस मिथक को तोड़ती हैं, है ना? गोल्ड रश सिर्फ समृद्धि का वादा नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नस्लवाद, उपनिवेशवाद और मानवीय लालच का एक बदसूरत चेहरा भी था।
अयंदे हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की आवाज बनती हैं, जैसे ताओ और दूसरे गैर गोरे खनिक।
हाँ, ये कहानी सिर्फ एलिजा की नहीं, उन हजारों गुमनाम लोगों की भी है जिनकी कहानियां इतिहास में खो गईं।
सही कहा, इसी अराजक माहौल में एक नाम तेजी से उभरता है, हुआकिन मुरियेता।
हुआकिन मुरियेता,
ये कौन है?
कहा जाता है कि वो एक खूबसूरत, करिश्माई लेकिन खूंखार डाकू है। कोई उसे चिली का बताता है, कोई मैक्सिको का।
डाकू?
हाँ, वो अमीर ग्रिंगो मतलब अमेरिकियों को लूटता है और अपने लोगों पर हुए अत्याचारों का बदला लेता है। उसे एक तरह का रॉबिनहुड माना जाने लगता है।
ओह, और एलिजा?
एलिजा के मन में एक भयानक शंका और एक फीकी सी उम्मीद जागती है। क्या ये डाकू मुरियेता वही आदर्शवादी हुआकिन अंधियेता है
जिसके लिए वो यहाँ तक आई?
हाँ, क्या कैलिफोर्निया की क्रूरता ने उसे इतना बदल दिया?
ये संभावना ही दुखद है। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि कैसे अन्याय और हिंसा एक भले इंसान के आदर्शों को कुचल सकती है।
हाँ, और उसे बदले की आग में झोंक सकती है। ये उस दौर की सामाजिक सच्चाई का प्रतिबिंब है।
तो एलिजा जिस हुआकिन को ढूंढ रही थी, क्या वो अब भी मौजूद है या सिर्फ एक नाम रह गया है?
ये सवाल एलिजा को भी परेशान करता है। जैसे जैसे मुरियेता की ख्याति बढ़ती है, उसकी तलाश और मुश्किल होती जाती है।
और इस बीच एलिजा और ताऊ का रिश्ता
वो और गहरा और जटिल होता जाता है। अब ये सिर्फ कृतज्ञता या दोस्ती नहीं है।
तो क्या है?
ये एक गहरी साझेदारी है, साझा अनुभवों, आपसी सम्मान और एक मौन समझ पर टिकी हुई। वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरी बन जाते हैं, एक दूसरे का घर, एक दूसरे का परिवार। ताओ एलिजा को न सिर्फ चिकित्सा सिखाता है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में शांत रहना, सेवा का मूल्य समझना, ये सब भी सिखाता है।
और एलिजा
अपनी जीवंतता और भावनाओं से धीरे धीरे ताओ को उसकी पत्नी की मृत्यु के गहरे दुख से बाहर लाने में मदद करती है।
तो ये रिश्ता ये उपन्यास के भावनात्मक दिल की तरह है ना? ये दिखाता है कि प्रेम के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं।
बिल्कुल, हुआकिन के साथ का रिश्ता जहाँ युवा जुनून था,
हाँ,
वहीं ताओ के साथ का रिश्ता परिपक्वता, स्थिरता और आपसी समर्पण पर आधारित है। अयंदे शायद यही दर्शाना चाहती हैं कि सच्चा साथीपन अक्सर शांत जल की तरह गहरे आपसी जुड़ाव से बनता है।
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर, कहानी अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है।
कैसे?
हुआकिन मुरियेता अब एक किंवदंती बन चुका है।
यस।
लेकिन साथ ही वो सरकार के लिए एक बड़ा खतरा भी। उस पर भारी इनाम घोषित कर दिया जाता है। कैलिफोर्निया रेंजर्स उसका पीछा करते हैं।
और एलिजा, उसके लिए अब ये खोज क्या मायने रखती है? अब ये जुनून कम और अपने अतीत के इस अध्याय को बंद करने की जरूरत ज्यादा बन गया है। वो अब वाल्पारेसो की भूली लड़की नहीं रही।
बदल चुकी है वो।
हाँ, उसने कैलिफोर्निया की आग में तपकर खुद को पाया है। वो कठोर हो गई है, अनुभवी, आत्मनिर्भर, अपने मन की मालिक।
ये बदलाव कैसे नजर आता है उसके व्यवहार में?
वो अब ज्यादा शांत है, ज्यादा सधी हुई। एलियास का भेस अब उसकी दूसरी खाल जैसा बन गया है, लेकिन वो अंदर से जानती है कि वो कौन है। उसके निर्णय अब भावनाओं से ज्यादा विवेक पर आधारित होते हैं। फिर वो दिन आता है जो सब कुछ बदल देता है।
क्या होता है?
कुछ इनाम के शिकारी सैन फ्रांसिस्को में दावा करते हैं कि उन्होंने हुआकिन मुरियता को मार गिराया है।
ओह।
और सबूत के तौर पर वे ब्रांडी से भरे कांच के जार में रखा उसका कटा हुआ सिर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखते हैं।
भयानक।
हाँ, बहुत भयानक। ये खबर एलिजा और ताओ तक पहुंचती है। भारी मन से वे उस प्रदर्शनी को देखने जाते हैं। माहौल तनाव और घृणा से भरा है।
और एलिजा क्या करती है?
एलिजा उस जार के सामने खड़ी होती जिसमें एक युवा का सिर रखा है। क्या ये हुआकिन है?
उसे पहचान पाती है।
वो उसे सिर्फ आंखों से नहीं देखती, वो अपनी यादों को टटोलती है, अपनी उस असाधारण सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करती है। क्या कोई जानी पहचानी गंध, कोई एहसास? उपन्यास यहाँ एक रहस्य बनाए रखता है।
मतलब हमें पक्का पता नहीं चलता?
नहीं, पक्का पता नहीं चलता।
लेकिन तभी उस सिर को घूरते हुए एलिजा को एक बिजली सी कौंधने वाली अनुभूति होती है।
क्या?
उसे एहसास होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिर हुआकिन का है या नहीं।
कोई फर्क नहीं पड़ता?
हाँ, वो जिस हुआकिन अंधियता के पीछे आई थी वो या तो मर चुका है या फिर इतना बदल चुका है कि वो उसे पहचान नहीं सकती, उससे प्यार नहीं कर सकती। उसकी सालों की खोज, उसका जुनून,
वो वहीं खत्म हो जाता है।
हाँ, उसी पल। उसे जिसे ढूंढना था वो बाहर नहीं, कहीं और था। वे कहानी का शायद सबसे मार्मिक और शक्तिशाली मोड़ है। बाहरी खोज का अंत एक गहरी आंतरिक खोज के शिखर पर होता है।
बिल्कुल,
लक्ष्य बदल जाता है। हुआकिन को पाना अब महत्वपूर्ण नहीं रहा।
महत्वपूर्ण हो जाता है खुद को पाना, खुद को मुक्त करना।
हाँ, ये एक तरह की मुक्ति है अतीत के बोझ से, एक ऐसे प्रेम के भूत से जो शायद था ही नहीं, या था भी तो अब खो चुका है।
हाँ बिल्कुल। एलिजा उस प्रदर्शन से मुंह मोड़ लेती है। वो ताओचेन के साथ चुपचाप बाहर निकल आती है। चलते चलते कहीं पानी में उसे अपना अक्स दिखाई देता है। वो ना एलियास है ना मिस सोमर्स, वो बस खुद है,
वो स्त्री जो इन सब अनुभवों से गुजरकर बनी है।
हाँ, और वो ताओ की ओर मुड़ती है और पूरी शांति और निश्चय के साथ कहती है, मैं आजाद हूँ।
मैं आजाद हूँ, आई एम फ्री। ये दो शब्द पूरी कहानी का सार हैं।
बिल्कुल।
ये आजादी ना सोने से मिली है, ना किसी पुरुष के मिलने या न मिलने से। ये आत्मा की आजादी है,
सामाजिक बंधनों से, दूसरों की उम्मीदों से, और सबसे बढ़कर अपने ही बनाए हुए जुनून के पिंजरे से आजादी।
और ये ताओ के साथ एक बराबरी की सम्मानजनक साझेदारी पर आधारित भविष्य चुनने की आजादी भी है।
हाँ,
चलिए अब उपन्यास के कुछ मुख्य विषयों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहचान और आत्मखोज का विषय तो स्पष्ट है ही।
हाँ, एलिजा की कहानी दिखाती है कि हमारी पहचान जन्म या परिस्थितियों से तय नहीं होती, बल्कि हमारे चुनाव, हमारे अनुभव उसे गढ़ते हैं।
और उसका वो लड़के का भेष, वो इसमें क्या भूमिका निभाता है? क्या वो सिर्फ एक ढाल है?
मेरे विचार से ये दोनों है। शुरुआत में ढाल है, लेकिन धीरे धीरे ये उसे एक ऐसा आईना दिखाता है जिसमें वो खुद को नए सिरे से देख पाती है।
कैसे?
पुरुषों की दुनिया में रहकर, पुरुषों जैसी आज़ादी पाकर, वो समझ पाती है कि स्त्री होने का मतलब समाज द्वारा थोपे गए दायरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये भेष उसे अपनी सीमाओं को लांघने का मौका देता है,
एक रूपक की तरह।
हाँ, कि कैसे हम अक्सर अपनी सच्ची पहचान खोजने के लिए बाहरी मुखौटे पहनते हैं।
और स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा का द्वंद, मिसरोज का जीवन वाल्पारेसो की सुरक्षित लेकिन घुटन भरी दुनिया का प्रतीक है।
जबकि एलिजा का रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन उसमें असीम संभावनाएं हैं। गोल्ड रश का वो अराजक माहौल
जहाँ सारे पुराने नियम टूट चुके हैं, वो एक तरह से पुनर्जन्म का अवसर भी बन जाता है। क्या ये कहा जा सकता है कि सच्ची स्वतंत्रता हमेशा जोखिम के साथ ही आती है?
हाँ, आए दिन शायद यही दिखाती हैं। सुरक्षा अक्सर सीमाओं के साथ आती है, स्वतंत्रता अनिश्चितता ला सकती है। एलिजा खतरे चुनती है और अंततः आंतरिक स्वतंत्रता पाती है।
और उसकी वो अंतिम पंक्ति, मैं आजाद हूँ।
हाँ, वो इसी चुनाव का परिणाम है। ये बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा मन की स्थिति है।
प्रेम की प्रकृति पर भी उपन्यास बहुत कुछ कहता है,
ह्वाकिन का प्रेम एक तूफानी युवा जुनून,
आदर्शों से भरा पर शायद यथार्थ से दूर। हाँ, कि कैसे हम अक्सर अपनी सच्ची पहचान खोजने के लिए बाहरी मुखौटे पहनते हैं।
और स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा का द्वंद, मिस रोज का जीवन वालपारेसो की सुरक्षित लेकिन घुटन भरी दुनिया का प्रतीक है,
जबकि एलिजा का रास्ता खतरों से भरा है लेकिन उसमें असीम संभावनाएं हैं। गोल्ड रश का वो अराजक माहौल
जहाँ सारे पुराने नियम टूट चुके हैं, वो एक तरह से पुनर्जन्म का अवसर भी बन जाता है। क्या ये कहा जा सकता है कि सच्ची स्वतंत्रता हमेशा जोखिम के साथ ही आती है?
हाँ, आए दिन शायद यही दिखाती हैं। सुरक्षा अक्सर सीमाओं के साथ आती है, स्वतंत्रता अनिश्चितता ला सकती है। एलिजा खतरे चुनती है और अंततः आंतरिक स्वतंत्रता पाती है।
और उसकी वो अंतिम पंक्ति, मैं आजाद हूं।
हाँ, वो इसी चुनाव का परिणाम है। ये बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा मन की स्थिति है।
प्रेम की प्रकृति पर भी उपन्यास बहुत कुछ कहता है। ह्वाकिन का प्रेम एक तूफानी युवा जुनून,
आदर्शों से भरा पर शायद यथार्थ से दूर,
और ताओ के साथ उसका लिस्पा, वो धीरे धीरे विकसित होता है समझ, सम्मान, साझा संघर्ष की नींव पर।
हाँ, क्या अयंदे यहाँ दो तरह के प्रेम की तुलना कर रही हैं, एक जो भस्म कर देता है
और दूसरा जो पोषण करता है।
मुझे लगता है हाँ, ह्वाकिन का प्रेम एलिजा को घर से निकलने को प्रेरित करता है लेकिन वो उसे लगभग नष्ट भी कर देता है। ताओ का प्रेम उसे बचाता है, उसे बढ़ने में मदद करता है। ये दिखाता है कि परिपक्व प्रेम आपसी देखभाल और एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करने में है जैसे वे हैं, किसी आदर्श छवि के पीछे भागने में नहीं।
और नारीवाद का पहलू, एलिजा 19वीं सदी की पारंपरिक स्त्री की हर छवि को तोड़ती है।
बिल्कुल, वो यात्रा करती है, काम करती है, अपनी मर्जी से जीती है, पुरुष भेष में पुरुषों की दुनिया में प्रवेश करती है।
क्या उसे सिर्फ एक विद्रोही चरित्र कहना काफी होगा?
वो उससे भी बढ़कर है। वो अनजाने में ही सही पितृसत्तात्मक समाज की नींव पर सवाल उठाती है। पुरुष का भेष धारण करके वो दिखाती है कि लैंगिक भूमिकाएं कितनी कृत्रिम हो सकती हैं।
मिस रोज भी अपने तरीके से विद्रोह करती हैं।
हाँ, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। एलिजा उन सीमाओं को लांघ जाती है। वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं खोजती बल्कि अनजाने ही स्त्री मुक्ति का एक प्रतीक बन जाती है।
उपन्यास सामाजिक न्याय, अप्रवासन, उपनिवेशवाद जैसे बड़े मुद्दों को भी बहुत बारीकी से छूता है। गोल्ड रश का चित्रण,
हाँ, वो सिर्फ सोने की चमक नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे शोषण, नस्लवाद और अन्याय को उजागर करता है।
हाशिए पर पड़े लोगों को केंद्र में लाती हैं अंधे।
हाँ, ताओ चियन जैसे चीनी मजदूर, चिली और मैक्सिकन खनिक जिन्हें उनकी अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा था, ह्वाकिन मुरेता की कहानी चाहे वो सच हो या मिथक,
वो इसी प्रणालीगत अन्याय के खिलाफ एक हिंसक प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा सकती है।
हाँ, ये अमेरिकी राष्ट्र निर्माण की कहानी का एक वैकल्पिक ज्यादा स्याह पक्ष प्रस्तुत करता है।
और अंत में भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा, शीर्षक है डॉटर ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य की बेटी। लेकिन क्या एलिजा सच में भाग्य की कठपुतली है?
ये शीर्षक शायद व्यंग्यात्मक है।
अच्छा।
हाँ, एलिजा को लगता है कि होआकिन उसका भाग्य है, लेकिन उसकी पूरी यात्रा ये साबित करती है कि भाग्य पहले से लिखा नहीं होता, उसे साहस और चुनाव से गढ़ा जाता है।
वो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती।
बिल्कुल नहीं, उन्हें चुनौती देती है। उसका असली भाग्य किसी बाहरी दौलत या व्यक्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक स्वतंत्रता में निहित है, जिसे वो खुद अर्जित करती है।
तो अंततः ये कहानी शायद हम ये ही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी खोज बाहरी दुनिया में नहीं,
बल्कि हमारे अपने भीतर होती है।
और शायद यही वजह है कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
हाँ, कि सच्ची दौलत या सच्चा भाग्य बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और अपनी शर्तों पर जीने की आंतरिक स्वतंत्रता में है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।